ओम शांति। भट्टी के अंतिम सत्र में हम सबको आने वाले लंबे समय के लिए तपस्या का ठप्पा लगाने और हमारे ईश्वरीय ब्राह्मीण जीवन में आंतरिक शक्तियों का बल भरने के लिए हमारे बीच पधारे हैं परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आत्म प्रकाश भाई जी, महाराष्ट्र के इस संगठन में आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। पिछले 50 वर्षों से आपने अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को जीवन का आधार बनाया है। 73 में आपने एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और 76 में आपने अपना जीवन बेहद विश्व की सेवा हेतु यज्ञ में समर्पित किया है। तब से लेकर आज दिन तक आप बाबा के इस बेहद परिवार में बेहद यज्ञ में सेवा के लिए निमित्त बने हो और विशेष आप टॉली डिपार्टमेंट को संभालते हो और इतने गोल्ड मेडलिस्ट बुद्धिजीवी आत्मा जब यज्ञ के प्रसाद को संभालती है तो आपने प्रसाद और विज्ञान को अच्छी तरह से समझा है और अनेक आत्माओं को समझाया है। ब्राह्मण परिवार की विशेष सेवा करने हेतु, ईश्वरीय परिवार में विशेष स्वउन्नति का फोर्स भरने हेतु अपने विदेशों में जाकर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। योगिक स्थिति, योग अनुभूति वो आपकी विशेषता रही है। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हो। आज आत्म भाई हम सबके बीच मन, बुद्धि, संस्कार की स्वच्छता एवं श्रेष्ठता इस विषय को स्पष्ट करेंगे। तो पुनः पुनः आत्म भाई आपका दिल से इस महाराष्ट्र के संगठन में, क्योंकि आपने भी नागपुर से ज्ञान लिया है, दिल से हम स्वागत करते हैं परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। मन बुद्धि की और संस्कारों की स्वच्छता एवं श्रेष्ठता ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि की स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगम युग है, चढ़ती कला का युग, और चढ़ती कला के युग में सदा चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि की स्वच्छता अति आवश्यक है, क्योंकि चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि का विशेष मेन रोल होता है। इसलिए मन बुद्धि को स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं हम सभी को हर रोज ज्ञान योग की पालना प्रभु के द्वारा मिलती है। प्रभु की पालना मिलते भी कभी कभी प्रभु पालना में थोड़ी सी कमी आती है तो हमारे पुराने संस्कार मन बुद्धि पर अपना प्रभाव डालते हैं। और परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति हलचल में भी आती है। इसलिए संस्कारों का शुद्धिकरण, संस्कारों की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। तो मन की स्वच्छता करने के लिए हमें सारे दिन भर में हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं उस संकल्पों की चेन को, संकल्पों के पैटर्न को चेक करते रहना बहुत जरूरी है। प्रायः देखा जाता है मन में चार प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। पहला है कर्म करने के लिए संकल्प चलना, जिसको आवश्यक संकल्प कहते हैं। दूसरा है सकारात्मक संकल्प चलना, शुद्ध संकल्प चलना। और तीसरा है व्यर्थ संकल्प चलना, किसी भी बात के लिए बार बार सोचते रहना, ये व्यर्थ के खाते में जाता है। और चौथा प्रकार है नकारात्मक संकल्प या कहें अशुद्ध संकल्प, किसी भी विकार के प्रभाव से हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चलते रहते हैं। अभी मन को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यकता है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करते रहना। व्यर्थ को अगर हम समर्थ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन युक्तियां हैं। पहली युक्ति, स्वयं के भ्रुकुटी पर फुल स्टॉप लगाएं और जो भी हमारे सामने सारे दिन भर में व्यक्ति आते हैं उनके भी भ्रुकुटी में आत्मा का फुल स्टॉप लगाना है। हम दोनों आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, बात खत्म। अगर हम उसको देह के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में यूं ही 5-7 संकल्प व्यर्थ चल पड़ते हैं। इस व्यक्ति का नाम ये है, इस व्यक्ति में ये गुण है, ये व्यक्ति ये करता है, इसमें ये कमियां हैं, ये यहाँ का रहने वाला है, बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करने के लिए व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए दूसरी युक्ति है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना। क्योंकि कोई ऐसी अनहोनी बात होती है या कोई आश्चर्यजनक बात होती है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है, जिससे आत्मा की बहुत कुछ ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। जो भी दर्श मेरे सामने आ रहा है वो केवल और केवल रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। हम सभी इस हॉल में इस रूप से बैठे हैं कि पहली बार नहीं बैठे हैं। हर कल्प ऐसी परिस्थिति में और ऐसे स्वरूप में हम बैठे रहेंगे और बाबा के घर में आपका आह्वान होगा और आपको ऐसे सुंदर भट्टी की करने के गोल्डन चांस, सुनहरा मौका मिलेगा। इसलिए बहुत भाग्यशाली आप आत्माएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। तो जो भी दर्श मेरे सामने से गुजर रहा है केवल और केवल रिपीटेशन है। कोई नई बात ही नहीं है तो व्यर्थ संकल्प क्यों चलाएं। और तीसरी युक्ति, मन में व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह चलता है, उसको समर्थ में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मन में बाबा जो मुरली में ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान के भोजन का मनन चिंतन करना बढ़ाते रहें, तो धीरे धीरे समर्थ संकल्पों का प्रवाह बढ़ता जाएगा और व्यर्थ का घटता जाएगा। इसी तरह से व्यर्थ संकल्पों से मन मुक्त हो जाता है। अभी अशुद्ध संकल्पों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति का भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते रहें, क्योंकि बाबा कहते हैं भाई बहन की दृष्टि भी हमारे मन में अपवित्र संकल्प ला सकता है, उससे भी हमें ऊपर उठना है और आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। तो बहुत सुंदर शुद्ध संकल्प मन में चलते रहते हैं, अशुद्ध खत्म होते जाते हैं। इस तरह से हमें मन को स्वच्छ बनाते जाना है। अभी बात है बुद्धि को स्वच्छ बनाने की। बुद्धि विशेष रोल योगाभ्यास में बजाती है। आत्मा की जो क्वालिटी है वो बुद्धि की क्वालिटी पर निर्भर होती है। अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है तो हमें बहुत उससे लाभ होता है। इसलिए कहते हैं जैसे बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है, जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है, जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार बुद्धि पर होता है, इसलिए बुद्धि को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। अभी बुद्धि में अशुद्धता किस प्रकार की होती है इसको समझना जरूरी है। जब हमारी बुद्धि किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होती है, बुद्धि रूपी आंख क्रिमिनल हो जाती है या किसी के नाम रूप में फंस जाती है, ये भी बुद्धि की अशुद्धता है। तो बुद्धि के चार काम हैं। आप सोचेंगे भाई कौन से चार काम हैं? पहला काम है बुद्धि का, बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है। प्यारे बाबा ने हमें जन्म दिन की सौगात दी है दिव्य नेत्र के रूप में, बुद्धि रूपी नेत्र के रूप में। तो आत्मा की आंख बुद्धि रूपी नेत्र कहलाती है। दूसरा काम है बुद्धि निर्णय का लेने का काम करती है, जजमेंट लेने का काम करती है। तीसरा काम है बुद्धि मेमोरी का काम करती है। जो भी पुरानी बातें हमारे मन में बुद्धि में समय रहती हैं, वो क्यों रहती हैं? क्योंकि बुद्धि मेमोरी का काम करती है, उसमें उसका कलेक्शन होता है। और चौथा काम और बहुत महत्वपूर्ण काम है, बाबा कहते हैं मुझे दिल से याद करो। अभी दिल क्या चीज है, दिल किसको कहते हैं? जब भी दिल की बात होती है हमारा हाथ यहाँ जाता है, हार्ट के ऊपर जाता है। मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रही हूँ, ये दिल नहीं है, ये तो शरीर का पार्ट है, हार्ट है। आत्मा का दिल उसको कहते हैं प्यार को एक्सप्रेस करने की शक्ति को दिल कहते हैं। तो बुद्धि ही दिल का काम करती हैं। इसलिए कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। तो बुद्धि के स्वच्छ होने से ये चारों काम बहुत अच्छी तरह से होते रहते हैं, उन्हें में भी श्रेष्ठता आती रहती है। इसलिए बुद्धि की स्वच्छता बहुत जरूरी है, दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं साफ दिल और मुराद हासिल। जब हमारा दिल साफ होता है तो मुराद अर्थात जो भी हमारा लक्ष्य होता है, मंजिल होता है, वो मंजिल हमें बहुत सहजता से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है बुद्धि स्वच्छ योग अग्नि से ही होती है और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। अभी बात आती है संस्कारों को स्वच्छ बनाने की। देखो संस्कार हमारे जब स्वच्छ होते हैं, बहुत रॉयल होते हैं और जेंटल होते हैं, तो भविष्य में हमारा जो जन्म होता है वो रॉयल परिवार में ऑटोमेटिक होता है। इसलिए संगम युग में ऐसे प्योर संस्कार, स्वच्छ संस्कार, रॉयल संस्कार आत्मा में धारण करते रहना बहुत जरूरी है। हम बाबा की पालना लेते हैं, हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, फिर भी विकारों के अंश जो आत्मा में हैं, वो नहीं मिटते हैं। तो विकारों के जो अंश वंश आत्मा में हैं, उनको अगर हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो उसके लिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। क्योंकि हम देखते हैं कितने वर्षों से योग का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, फिर भी व्यवहार में जब हम आते हैं कभी कभी हमें रोब आ जाता है, कभी कभी हमें फीलिंग आ जाती है, ईर्ष्या आती है। तो मोटे रूप से हमारे संस्कार परिवर्तन तो जरूर होते हैं, लेकिन महीन रूप से बहुत सूक्ष्म रीति से संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए बाबा का इशारा है अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्योंकि हम एक तरफ संस्कारों को स्वच्छ अर्थात शुद्ध बनाना है और दूसरे तरफ शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है, अनेक आत्माओं को शक्तियां प्रदान करनी होगी और ये काम शक्तिशाली योगाभ्यास से ही संभव हो सकता है। अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को कैसे बढ़ाएं, इसका सीक्रेट क्या है? क्योंकि कई वर्षों से आप अभ्यास करते हैं फिर भी योग की जो क्वालिटी हमें इम्प्रूव करना होती है, योग को शक्तिशाली बनाना हम चाहते हैं, फिर भी वो नहीं होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मन बुद्धि के बारे में 5 बातें अगर आप जानेंगे तो आपका योगाभ्यास धीरे धीरे निखरता जाएगा और बहुत शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए मन बुद्धि के बारे में पहली बात है, जब हम एकांत में बैठते हैं तो आत्मा तो ये शक्तियों का पुंज है, तो कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए योगाभ्यास में सफलता नहीं मिलती है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ को देखा है? प्रश्न पूछते ही आपके सामने शांति स्तंभ की तस्वीर इमर्ज हो जाती है। आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, फिर भी कोई शक्ति उसको देख रही है, वो है बुद्धि रूपी नेत्र, आत्मा की विजुलाइजेशन पावर। हाँ, और दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न आपको पूछते हैं, शांति स्तंभ कैसा है, शांति स्तंभ पर कौन सी बातों का जिक्र किया है, फिर आप सोच सोच के मुझे बताएंगे। चार बातों का जिक्र किया है, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ, और कुछ बातें बताते जाएंगे। तो सोचने वाली शक्ति मन है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस आपके सामने क्लियर होने से आपका योग बहुत बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों शक्तियां आपस में साथ में रहती हैं, कुछ तो इनका संबंध होगा। तो मन का काम सोचना है, लेकिन मन बुद्धि का रिलेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का बॉस है, मन केवल उसका फॉलोअर है। इसलिए मन को कंट्रोल हमें नहीं करना है, उसके बॉस को पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है। बुद्धि अगर आपके नियंत्रण में होगी तो मन आपके नियंत्रण में रहेगा। तो इनके रिलेशन को जानने से इनका प्रयोग सहज रीति से योगाभ्यास में कर सकते हैं। तीसरी बात, किस प्रकार का मन और किस प्रकार की बुद्धि योगाभ्यास बढ़ाने के लिए चाहिए। मन हमारा बहुत शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मनमना भाव का जाप करता ही रहता है, तकता नहीं है। बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, किसी भी युक्ति को अपनाकर बुद्धि को हमने सारे दिन भर में एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है, क्योंकि बुद्धि का रोल योगाभ्यास में मुख्य होता है। तो ऐसी बुद्धि सारे दिन भर में योगाभ्यास में अथक बनकर कार्यरत रहती है। और चौथी बात है, इन दोनों शक्तियों का योगाभ्यास में कैसे प्रयोग करें। जब भी हम योग करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में बैठना है, उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में शिवभावा पर या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिवभावा पर एकाग्र करना है। जब बुद्धि बाबा को देखती है तो मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहता है और हमारा कनेक्शन बाबा से जुटा रहता है। लेकिन बुद्धि अगर बाबा से हट जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में कैसे जोड़ें? ये युक्ति हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कई बातें हमारे सामने आने वाली हैं। तो उसकी बहुत सरल और सिंपल विधि है, जब हमारा कनेक्शन टूटा हुआ होता है उस समय हमें चेक करना है बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, बाबा पर नहीं कहीं और है, उसको चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर उसको बिठाना है। एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा और जैसे कनेक्शन मिलेगा शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होगा। तो इस तरह से इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में करते जाना है। और पांचवी बात है, इन दोनों को सारे दिन भर में कैसे माया दुश्मन से सेफ रखें। ये हमारा राज नहीं है, ये माया दुश्मन का राज है। तो आत्मा के जो मन बुद्धि रूपी बच्चे हैं, इनको सेफ रखना है तभी वो काम करेंगे योगाभ्यास में। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। जब बाबा के सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, सुंदर योगाभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, तो ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखेंगे तो माया दुश्मन मन बुद्धि पर वार नहीं कर सकता है। अगर माया वार करे भी तो भी उसका असर उस पर नहीं होगा। इसलिए सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में झूमते रहें, मस्ती में सदा मस्त रहें। अभी इन बातों को जानने के बाद शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए विशेष तीन बातों पर अभ्यास आपको दिल से करना होगा। पहली बात, इससे शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करना है। बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है और मैं सितारा कैसा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो शांति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा रूपी चैतन्य सितारे से निकल रहे हैं, ऐसा अभ्यास करते रहना है। इस अभ्यास में दो बातें हैं। पहली बात, देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है 100% आत्मा का भान होना और 0% देह का भान होना, ये हमारी मंजिल है। तो हमें चेक करते जाना है हम मंजिल के समीप कितना पहुंच रहे हैं। दूसरी बात है, ऐसी गहराई की आत्मिक स्थिति लंबे समय तक सारे दिन भर में रहें, इसको हमें चेक करते रहना है। तो बाबा बहुत मजे की बात मुरली में कहते हैं, देह को भूलो और मुझे याद करो। देखो दोनों बातों का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए कहते हैं जब समझते आत्मा तो विपापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही, देह को भूलते ही हमें बाबा की याद ऑटोमेटिक आती है। तो हमें क्या करना है, देह को भूलना है और बाबा को याद करना है। तो गहराई की आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति के अनुभव को बढ़ाना है। जब भी हम बैठक का योग करते हैं अमृत वेले या नुमा शाम के समय, तो ज्ञान सूर्य बाबा के सामने जब हम बैठते हैं तो स्वयं को केवल आत्मा नहीं समझना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ऐसे शक्तिशाली भान में हम स्थित होते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो परिणाम स्वरूप जो शक्तियों का पावर हाउस बाबा हैं, उनसे अथाह शक्तियां हम ग्रहण करते हैं और ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती रहती है। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को हमें बढ़ाना है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात परम धाम रूपी पीस पैलेस में जाकर बाबा को बहुत नजदीक से हमें देखना है। बाबा के स्वरूप को हमें नजदीक से देखना है कि बाबा कैसे हैं, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बहुत थोड़े बच्चे याद करते हैं। तो इसके लिए बाबा के व्यक्तित्व को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बाबा का स्वरूप कैसा है? बाबा बिंदु ही है, जैसे आत्मा बिंदु है वैसे बाबा भी बिंदु ही है, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा जिन सात गुणों का स्वरूप है उन सात गुणों के बाबा सिंधु हैं अर्थात सागर हैं। आप सोचो जिस बिंदु में सात सागर समाये हुए होंगे वो कितनी पावरफुल बिंदु होगी, आप सोच सकते हैं। हमने बाबा कह के ऑर्डिनरी बना दिया। अरे दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है वो, सारा संसार उनके मुट्ठी में है, तीनों कालों का कारोबार उनके आधार से चलता है, कितनी बड़ी वो हस्ती होगी। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं को मैनेज पार्ट दिया हुआ है, अर्थात जो कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्ते हैं उनको भी हिलाने का काम, उनको भी चलाने का काम वो महान हस्ती करती हैं। तो आप सोचो कितने वो शक्तिशाली बिंदु होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में लोगों ने परमात्मा का स्वरूप की जब तुलना की तो इस दुनिया के सूर्य से की। इस सूर्य को सूर्य दो कारणों से कहते हैं। पहला कारण है ये सूर्य भौतिक शक्तियों का निरंतर वितरण करता ही रहता है, और दूसरी उनकी विशेषता है उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। जब भी बारिश में कचरा गंदगी बदबू होती है, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है वो भस्म हो जाता है कचरा गंदगी और धरती साफ सुथरी होती है। तो परमात्मा को भी ज्ञान सूर्य कहते हैं। पहली उनकी विशेषता है वो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड अखंड स्रोत हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी हैं। निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण करते ही रहते हैं। ये सूर्य तो केवल एक दुनिया का सूर्य है, बाबा जो सूर्य है तीन लोगों के सूर्य हैं। तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता रहता है, इतना उनका स्वरूप शक्तिशाली है। और दूसरी बात है उनका प्रकाश जब आत्मा पर पड़ता है, आत्मा में जो भी गंदगी विकारों के अलॉय है अंश वंश है वो सारे भस्म हो जाते हैं, आत्मा क्लीन कंचन सोना बन जाती है। तो कहने का भाव है बाबा के स्वरूप को बहुत गहराई से देखें, बस नजदीक से देखें कि बाबा की पर्सनालिटी बहुत गजब की है। मन देखो बाबा का कितना सतुपदान है, कितने शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करते हैं, सारे संसार के कल्याण के भावना के कनेक्शन में संकल्प क्रिएट होते हैं। बुद्धि बुद्धि कैसी है? बुद्धि बहुत सतुपदान है और संस्कार बहुत रॉयल है जेंटल है। तो ऐसा बाबा का व्यक्तित्व हमें देखना है और अनुभव भी करना है। योगाभ्यास करना अर्थात जो शक्तियों के सागर बाबा हैं उनके नजदीक अर्थात शक्तियों के सागर के कंठे पर बैठना और शक्तिशाली लहरों में लहराते जाना, इसको कहते हैं सफल योगाभ्यास। तो ऐसा गहराई से और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए मान बुद्धि संस्कारों की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार सदा बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो बाबा के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है हड्डी प्यार की, जिगरी प्यार की, सच्चे प्यार की। केवल ऊपरी प्यार की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने देखा हमारी दादियां जब इस स्टेज पर बाप दादा से मिलती थी उस समय बाबा उनको अपने बाहों में समा लेता था, दादियां भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। क्या था दादियों के पास में, उनके पास उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार समाया हुआ था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। तो प्यार हो तो ऐसा हो दिल का सच्चा प्यार हमारा बाबा के साथ हो, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदा करने के लिए आया हूँ। आपके पास क्या है, किराए का मकान तो लेकर बैठे हो, ये भी मकान आपका नहीं है, प्रकृति से किराए से लिया हुआ है। आपके पास केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, उसका मैं सौदा करने के लिए आया हूँ। बोलो करोगे, बाबा सामने पूछता है हम बच्चों से कि बोलो मुझसे प्यार का सौदा करोगे, बोलो भाई हाँ या ना, करोगे या नहीं करोगे बताइए। तो बाबा के दिन में बहुत पक्का सौदागर हूँ और बहुत सच्चा सौदागर हूँ, जितना प्यार मुझसे आप करोगे उतना ही मैं करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा। बताओ सारा कल्प तो हम आत्माओं के साथ रहे, प्यार की लेन देन करते रहे, अभी संगम अर्थात भगवान के संग में रहना, संगम अर्थात परमात्मा के साथ प्यार की लेन देन करना। अगर केवल भगवान से ही प्यार करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार नहीं करना चाहते हैं शेयर, तो पांच बातें आप जानेंगे तो भूल से भी किसी व्यक्ति के साथ प्यार नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं। जानना चाहोगे पांच बातें प्यार के बारे में, वो जानेंगे तो कभी भी भूल से भी किसी व्यक्ति वैभव से प्यार नहीं करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। द्वापर युग से हमने बहुत कड़वे अनुभव किए, बहुत धोखे खाए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी रिलायबल लव है। इसलिए लोगों ने कहा है मनुष्य का अंत पाना बहुत मुश्किल है, भगवान का अंत तो पा सकते हैं, यहाँ तो कह दिया है अनुभव के आधार से। दूसरी बात, भगवान का प्यार अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भगवान कहते हैं बस सच्चे दिल पर साहब राजी। देखो ये भोली भोली माताएं हमारी उस भोलानाथ के दिल को जीत कर यहाँ बैठी है, उनके गोदी में बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से पालना ले रही है। बाबा कहते हैं मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे वफादारी चाहिए, थोड़ी भी वफादारी बेवफादारी करोगे तो मैं धर्मराज भी हूं, इसलिए केवल सच्चे दिल पर साहब राजी करना है तो बाबा से दिल से प्यार करना है। तीसरी बात, परमात्म प्यार बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार तो हद का है, वो गागर है और वो अभी खाली उछल रही है, क्या प्यार करेंगे उनसे। बेहद का प्यार है परमात्मा का और इनका हद का प्यार है और विनाशी प्यार है और स्वार्थ भरा प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार नहीं करता है। एक ही परमात्मा है जो सारे संसार में निस्वार्थ प्यार हम बच्चों से करते हैं। केवल हमें प्यार करते ही रहते हैं, हमारे से कुछ भी नहीं चाहते हैं। अभी चौथी बात, संगम युग है आत्मा को पवित्र बनाने का, शुद्ध बनाने का, स्वच्छ बनाने का। तो केवल परमात्म प्यार ही हमें स्वच्छ और शुद्ध बनाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें अभी और भी अशुद्ध बनाता है। अब शरीर 5 अशुद्ध तत्वों से बना हुआ है, आत्मा में भी अशुद्धि है, उनसे प्यार करेंगे तो भाई इम्प्यूरिटी बढ़ेगी ना। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है, परम धाम में ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है, क्या प्यार करेंगे भाई उनसे। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती हैं। ये तो थर्ड फ्लोर है, ये माया की दुनिया है। तो इसलिए हमें परमात्म प्यार होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। इसलिए इन 5 बातों को जानकर हमें केवल परमात्मा से ही प्यार का सौदा करना है। तो दिन प्रतिदिन आपका योगाभ्यास क्वालिटी वाला होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा। और उस शक्तिशाली योगाभ्यास में बुद्धि का और संस्कारों का शुद्धिकरण होगा, उसकी स्वच्छता होगी। हम 87 में मधुबन निवासी मधुबन में बाप दादा से मिल रहे थे, तो बाबा से मिलते समय एक प्रश्न डायरेक्ट बाबा से पूछा, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे शक्तिशाली योग की क्या परख है, क्या निशानी है। तो बाबा ने कहा था, शक्तिशाली योग की 2 निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में योग एक अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे पुराने पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझा है वो घटने लगता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य की ओर, संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे हमें खुशी होती है। तो इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास में ये दोनों अनुभूतियां हमें करते रहना है। अभी बात आती है मन बुद्धि संस्कारों की श्रेष्ठता कैसे बढ़ाएं। स्वच्छता के साथ श्रेष्ठता भी बढ़ाना जरूरी है। अभी मन को अगर श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर बैठे रहें, डटे रहें, उससे क्या होगा, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी। उससे क्या होगा, हमारे मन में बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्पों की रचना बढ़ती जाएगी और मन हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा, शक्तिशाली बनता जाएगा। अगर ईश्वरीय नशे में नहीं रहते हैं और साधारण आत्मा समझते हैं तो मन में साधारण ही संकल्प चलते रहते हैं। दुनिया में कहते हैं जो अच्छा खाना खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, तो ऐसे ही मन को अगर हम शक्तिशाली भोजन शक्तिशाली संकल्पों का खिलाते रहेंगे तो मन भी हमारा शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनता जाएगा। बुद्धि को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बुद्धि की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। हर रोज ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना, क्योंकि जितना मनन चिंतन करते हैं ज्ञान के गुह्य राज हम समझते हैं, तो ज्ञान सूर्य से हमारी बुद्धि में ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, और जितनी ज्ञान की रोशनी बढ़ती है बुद्धि हमारी दिव्य दुरंदेशी विशाल और हंस बुद्धि बनती है, पारस बुद्धि बनती है, बुद्धि की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। इसलिए हर रोज ज्ञान का मनन चिंतन हमें जरूर करते जाना है। हम देखते हैं भगवान से भक्ति मार्ग में हम यही मांगते थे कि हे भगवान मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दे दो। हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी की बुद्धि बहुत विशाल थी। दादी जी हमेशा सारे विश्व के बारे में सोचती थी, विश्व के बारे में प्लानिंग करती थी, इसलिए दादी जी वर्ल्ड लीडर बन चुकी थी। ऐसे हमारी भी बुद्धि विशाल बनती जाए। और एक बात है, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुद्धि ईश्वरीय सेवा में लगाते जाएं। दुनिया में एक से एक बढ़कर बुद्धिमान हैं लोग, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल दुनियावी बातों में ही करते हैं। लेकिन हमें चॉइस है, हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय कार्य में ईश्वरीय सेवा में जितना लगाते हैं उतनी बुद्धि की दिव्यता उतनी बुद्धि की श्रेष्ठता स्वतः ही बढ़ती जाती है। इसलिए बुद्धि को जितना हो सके बाबा की सेवा में बिजी रखें। अभी संस्कारों की श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? शुद्धता तो योगाभ्यास से हो जाती है, लेकिन श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए हमें संस्कारों का दिव्यीकरण करना जरूरी है। और संस्कारों का दिव्यीकरण करने के लिए आवश्यकता है दिव्य गुणों की धारणा बढ़ाते रहना। जितनी दिव्य गुणों की धारणा बढ़ाते रहते हैं उतने संस्कारों में दिव्यता बढ़ती जाती है, भव्यता बढ़ती जाती है और श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। और शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में कहो या भविष्य में कहो, हमारे जन्म किस प्रकार के परिवार में होते हैं इसका जवाब एक ही है। जितने हमारे संस्कार रॉयल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जेंटल होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जन्म भी ऐसे रॉयल परिवार में होता है, स्वतः ही होता है। इसलिए आवश्यकता है संस्कारों को दिव्यीकरण करते रहे, श्रेष्ठ बनाते रहे। लेकिन संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है, इसको बहुत समझना जरूरी है। हमारे संस्कार रॉयल संस्कार कैसे आत्मा में धारण होते हैं उसकी विधि आपको बताता हूं। पहली स्टेप है श्रेष्ठ स्वमान में रहना। दूसरी स्टेप है श्रेष्ठ संकल्प मन में क्रिएट करना। तीसरी स्टेप है श्रेष्ठ बोल मुख से निकलते रहना। और चौथी स्टेप है ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहना। और पांचवी स्टेप है ऐसे श्रेष्ठ संस्कार बनते जाना। तो ये श्रेष्ठ संस्कार बनाने की स्टेप्स हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? सदा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने से शुरुआत हुई है। अगर आप ब्राह्मण जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं, ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है? बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसमें जितनी चाहे सफलता नहीं मिलती है। उसका सीक्रेट है दो बातों पर अगर आप दिल से अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी। पहली बात है अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना। और दूसरा सीक्रेट है स्वमानधारी होकर रहना। सारे दिन भर में श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। हम जो भी सभा में बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्मा इसमें नहीं है, एक भी साधारण आत्मा इसमें नहीं है। लेकिन भले साधारण परिवार से आई हो, लेकिन रॉयल टी को बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर साधन दिया है। मीठे बच्चे, स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहो। मैं आत्मा सिंहासन है, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे सिंहासन पर बैठेंगे तो ईश्वरीय नशा बढ़ता जाएगा, एक अलौकिक मस्ती आपके चेहरे पर बढ़ती जाएगी और रॉयल्टी नोबिलिटी बढ़ती जाएगी और श्रेष्ठ संस्कार ऑटोमेटिक धारण होते जाएंगे। और सतयुग में जैसे धरती पर आएंगे, बहुत राजा महाराजा के घर में आपका जन्म ऑटोमेटिक होगा। इसलिए आवश्यकता है ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी आत्मा से मान शान मिलने की। भगवान ने मुझे इतने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो ऐसे ऊंचे सम्मान में रहेंगे, सम्मान में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती जाएगी। सारे ब्राह्मण में आप एक बात कभी भी नहीं भूलना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम बाबा के पास आए हैं श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाना है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए। तो अवस्था अच्छी होगी तो आत्माओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, तत्वों के द्वारा हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी होती जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर हमें इन दोनों बातों पर अभ्यास करना है। मन बुद्धि संस्कारों को स्वच्छ स्वस्थ और श्रेष्ठ बनाते जाना है। क्योंकि महाराष्ट्र अर्थात महान राष्ट्र में रहने वाले आप सभी महान आत्माएं हैं। जब भी बाबा महाराष्ट्र की आत्माओं से मिलते रहे, बाबा उनकी महानताओं की विशेषताओं की बहुत गुणगान करते रहे, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ भूमि पर आपका जन्म लौकिक और अलौकिक हुआ है, इसलिए आप सभी बहुत महान आत्माएं हैं। अभी हम सभी एक घंटा, बीच में किसी को भी नहीं उठना है, 7:30 बजे भी किसी को नहीं उठना है, आखिरी ये सेशन है। ऐसे सुंदर योग की अनुभूति आपको बाबा कराएंगे जो सदा के लिए यादगार बन जाएगी। इसलिए एक घंटा हम बाबा की याद में खोए रहेंगे, मस्ती में मस्त हो जाएंगे, इसलिए सभी थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे।
सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।